ज्योति बिंदु परमात्मा से है मेरी आत्मा, अब चल कर ले मिलन। शांति, सभी कहेंगे ओम शांति, ओम शांति। आप सभी भाई बहने शांति प्रिय आत्माएं हो और परमात्म प्रिय भी हो। परमात्मा से आपकी बहुत प्रीत है और शांति से भी प्रीत है। परमात्मा से ही सभी शांति मांगते हैं और उसके लिए ही उनको याद करते हैं। शांति देवा कहते हैं, लेकिन फिर भी हम सबकी ये शिकायत है कि शांति हमसे कोसों दूर क्यों जा रही है। इसीलिए कहा गया, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। शांति की भीख मांगते मांगते हम शांति से बहुत दूर चले गए हैं। और राजयोग वो साधना है जिससे शांति हम अधिकार के रूप में प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि शांति मांगने की चीज नहीं है, ये अनुभव करने की चीज है। परंतु क्यों नहीं अनुभव हुई शांति? क्योंकि परमात्मा से जो सच्ची प्रीत चाहिए वो नहीं थी, स्वार्थ था। और वो प्रीत चाहते तो थे लेकिन जोड़े कैसे यही पता नहीं था। तो चाहे हमने पूजा की, पाठ किया, जप तप, तीर्थ यात्राएं, बहुत कुछ किया, लेकिन फिर भी हम ईश्वर से दूर ही रहे। हम परमात्मा को याद करते रहे, उसके लिए मंत्र जाप भी किए होंगे, माला भी फेरी होगी, लेकिन फिर भी मन तो लगा ही नहीं। पर कबीर का एक दोहा याद आता है, माला फेरत फेरत युग बीत गया, हाथ के मणके फेरते फेरते युग बीत गया, पर फिरा न मन का फेर। तो हाथ के मणके कर के मणके फेरते फेरते तो युग बीत गए, लेकिन मन का मणका नहीं फिरा। अब कर का मणका छोड़कर मन का मणका फेरो, यही हमें योग सिखाता है। मन का मणका कैसे फेरना होता है वो हम आपको आज बताएंगे। तो मन कैसे लगे सहज परमात्मा में वो आपको आज विधि बताएंगे। अभी अभी हमने ये गीत सुना, ज्योति बिंदु परमात्मा से ए मेरी आत्मा तू कर ले मिलन। जिस मिलन से परमानंद का तू अनुभव कर ले, हो जा तू मन में मगन। वास्तव में यही राजयोग है। तो योग क्या है? योग अर्थात संबंध, जोड़, मिलन। और राजयोग अर्थात उस सर्वोपरि, सर्वश्रेष्ठ, सर्वोत्तम परमात्मा से मिलन। और राजयोग हमें वो सबसे ऊंची विधि सिखाता है जिससे हम मिलन मना सके। कई समझते हैं कि परमात्मा तक पहुंचना, उसके लिए तो अनेक रास्ते हैं। और उदाहरण दिए जाते हैं कि एक पहाड़ की चोटी पर पहुंचने के लिए अनेक रास्ते हो सकते हैं, क्योंकि परमात्मा की प्राप्ति माना एक पहाड़ की चोटी। तो अनेक रास्ते होते हैं उस चोटी तक पहुंचने के लिए, लेकिन फिर भी समझदार व्यक्ति कोई कठिन, बहुत ही लंबा, बहुत ही कष्टदायक वो तो रास्ता नहीं चुनेगा। वो यही चुनेगा कि सबसे सहज रास्ता हो, सुगम हो, सरल हो, शॉर्टकट हो, क्योंकि लोगों के पास समय तो है नहीं, बहुत बिजी रहते हैं। समय भी बहुत बड़ी संपत्ति बन गई है, समय कम है, मंजिल तो बहुत दूर है। तो कैसे सहज रूप से हम परमात्मा मिलन का भी अनुभव कर सके? तो राजयोग वो सहज विधि बताता है, साथ साथ सबसे ऊंची विधि है ये, जिसमें शरीर को कष्ट देने की जरूरत नहीं है। तो क्या हमें करना होगा और उससे क्या प्राप्ति करनी है, ये सिर्फ हमें समझना होगा। तो आज तक हम जितना भी प्रयास करते आए, उसमें हमने यही शिकायत की कि सब कुछ कर रहे हैं फिर भी मन क्यों नहीं लगता ईश्वर में। तो उसका कारण हम पहले समझें। राजयोग उसका कारण बताता है। जैसे किसी को कोई बीमारी है, तो बीमारी का जब तक कारण नहीं पता चला है, तब तक उसका निवारण भी क्या देंगे। इसीलिए आजकल सारे कितने पैथोलॉजिकल टेस्ट लिए जाते हैं, ब्लड टेस्ट लेते हैं, फलाना टेस्ट, ये टेस्ट, न जाने एक टेस्ट ही टेस्ट लेते रहते हैं, क्योंकि कारण का पता नहीं चलता है। और जब कारण का पता चल जाता है तो निवारण भी सहज हो जाता है, दवाई वही देंगे। तो मन क्यों भटकता है, परमात्मा में क्यों नहीं लगता? एक तरफ तो हम कहते हैं कि परमात्मा से हमारे सब संबंध है, त्वमेव माताश्च पिता, त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा, त्वमेव, त्वमेव विद्याद्रविणम्, त्वमेव, त्वमेव सर्व मम देव देव। सब संबंध ईश्वर के साथ है। गीत भी गाते हैं, पितु मात सहायक स्वामी सखा, तुम ही सबके रखवाले हो। तो वो जो मात पिता है, बंधु सखा है, स्वामी है, सदगुरु है, सब कुछ है वो, फिर भी उनके लिए कहते मन नहीं लगता उनमें। आज कोई भी बच्चा अपने माँ बाप के लिए ये कभी नहीं कहेगा कि मेरा मन उनमें लगता नहीं है, कभी नहीं। तो क्या कारण है कि परमात्मा हमारे मात पिता है तो भी मन नहीं लगता, और जो शरीर के मात पिता है वो तो फिर भी एक जन्म के मात पिता है। हर जन्म में वही मात पिता मिले ये जरूरी नहीं है, लेकिन परमात्मा तो मात पिता हर जन्म में है। हर जन्म में हमने उनको यही प्रार्थना में कहा, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव। तो जो हर जन्म का साथी है, हर जन्म में हमने उसे याद किया है, प्रार्थना की है, उसी के लिए हम शिकायत करते मन नहीं लगता। तो कारण क्या है? तो सबसे बड़ा कारण है कि ये त्वमेव माताश्च पिता कहने वाला कौन, मैं, वो मैं कौन हूं, यही पता नहीं था। अपने आप को शरीर ही समझते आए, तो शरीर का संबंध परमात्मा के साथ नहीं है। क्यों? क्योंकि ये शरीर तो प्रकृति की देन है। शरीर के माता पिता के द्वारा ये शरीर प्राप्त हुआ, जो प्रकृति से बड़ा हुआ, लेकिन परमात्मा का संबंध तो आत्मा के साथ है। जब किसी की मृत्यु होती है तो शरीर तो वहीं पड़ा होता है, लेकिन फिर भी हम क्या कहते, भगवान के पास गया। तो कौन गया भगवान के पास? शरीर तो गया ही नहीं। शरीर को तो अग्नि को सपोर्ट कर देंगे, भाई जहां से शरीर आया है पंच तत्वों से, पंच तत्वों में वापस लौटाना है, जहां से जो चीज आई है वहां वापस देनी है। लेकिन आत्मा के लिए कहेंगे परमात्मा के पास गया, और आया तो भी कहेंगे भगवान ने दिया, शरीर नहीं दिया, आत्मा दी। और इंसान मर भी गया तो भी उनकी आत्मा को याद करते हैं, और फिर परमात्मा को कहते हैं, हे प्रभु इनकी आत्मा को शांति देना। अर्थात आत्मा का संबंध परमात्मा के साथ है। शरीर तो शांत हो गया, शरीर को शांति देना ये नहीं कहेंगे। शरीर की शांति माना मृत्यु, वो तो हो गई। और फिर परमात्मा से कौन आया है? आत्मा। और कहाँ गया? परमात्मा के पास गया। भगवान के घर से आए हैं, भगवान के घर जाना है। शरीर नहीं भगवान के घर से आया है। आत्मा के लिए कहेंगे, कहाँ तेरी मंजिल, कहाँ है ठिकाना, कहाँ तुझको जाना, मुसाफिर बता दे कहाँ तुझको जाना। तो आत्मा की मंजिल ठिकाना ये पता ही नहीं, शरीर की मंजिल ठिकाना वो तो पता है, मिट्टी से आई है मिट्टी में मिल जाना है। तो इसीलिए राजयोग में हमें सबसे पहले वो पहचान मिलती है कि मैं कौन हूं, योगी कौन है। तो जैसे आपको ये पहचान मिली आज प्रातः काल के सत्र में, आपने अपने आप को पहचाना। अभी अगर आपसे कोई अभी पूछे आप कौन हैं, तो क्या उत्तर देंगे? हाँ, मैं फलाना हूँ, ये नाम, ये रूप, ये जाति, ये भाषा, ये नहीं। मैं कौन हूँ? कौन है हम सभी? आत्मा है, क्योंकि आत्मा ही बोल रही है। शरीर में से आत्मा निकल गई तो शरीर कैसे बोलेगा? तो आत्मा ही बोल रही है, आत्मा ही देख रही है, तो वो मैं हूं। ऐसे नहीं मेरे अंदर एक आत्मा है, ऐसे नहीं, मैं आत्मा मेरे शरीर में हूं। तो जब पता चल गया कि मैं एक आत्मा हूं, तब फिर मन परमात्मा में लगना शुरू हो जाएगा। तो दूसरा कारण मन क्यों नहीं लगा परमात्मा में, फिर वो भी कारण है। चलो आत्मा का ज्ञान मिल भी गया, पहचान हो भी गई, समझ भी लिया, लेकिन हे परमात्मा जब हम कहते तो किसको कहा, कौन है वो, ये भी पता नहीं। तो राजयोग में दूसरा परिचय परमात्मा का हमें मिलता है, जिसमें मन लगाना है उसका ही पता नहीं था, तो मन लगाए किसमें? तो दूसरा कारण है कि परमात्मा की पहचान नहीं थी, और आपको वो पहचान दी गई आज दिन में कि परमात्मा कौन है। अब दोनों की पहचान मिलने के बाद भी एक तीसरा कारण बनता है, जैसे कई बार आप मोबाइल पर किससे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आपका मोबाइल भी चार्ज होना चाहिए। चलो वो चार्ज है, पर जिसको कर रहे हैं उसका भी चार्ज होना चाहिए, मोबाइल नंबर भी सही होना चाहिए। चलो वो भी सही है, पर कई बार बात करते करते कट जाता है, टावर ही नहीं, खत्म हो जाता है, कि रास्ते चलते चलते वहाँ टावर ही नहीं है उसका, तो बंद हो जाएगा। तो आत्मा और परमात्मा का ज्ञान तो मिल गया, मन लगाना शुरू भी किया, लेकिन एक तीसरा कारण है जो विघ्न बन जाता है, और वो कारण क्या है कि जिस मन में हम परमात्मा को स्थान देना चाहते हैं वो मन आज इतना मैला हो गया है। कम्युनिकेशन परमात्मा से कैसे हो, लाइन भी तो क्लियर चाहिए ना। जिस मन में हम परमात्मा को स्थान देना चाहते हैं वो मन इतना दूषित हो गया है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष नफरत वैर दुश्मनी बेईमानी हेराफेरी चुगली न जाने क्या क्या सब कुछ मन में चल रहा है, कितनी नेगेटिव थिंकिंग है। तो आपको वो भी आज विषय मिला, पॉजिटिव थिंकिंग कैसे करें। तो राजयोग में तीसरा कारण का भी पता चला कि मन दूषित था, इसीलिए नहीं लगा परमात्मा में मन। तो मन का शुद्धिकरण भी जरूरी है, तो राजयोग वो भी बताता है कैसे शुद्धिकरण करें जो मन परमात्मा में मग्न हो सके। अब ये तीन कारण को समझने के बाद निवारण क्या होगा कि सबसे पहले अपने आप को आत्मा निश्चय करना है, ये पहला कदम है राजयोग में। मैं एक आत्मा हूं, मैं ये शरीर नहीं हूं। जैसे ये शरीर पर वस्त्र पड़े हैं ये शरीर से अलग हैं, तो मैं भी आत्मा हूं जिसने ये देह रूपी वस्त्र धारण किया है। तो देह रूपी वस्त्र तो अलग चीज है, तो मैं जब चाहूं देह रूपी वस्त्र से न्यारा हो सकता हूं, मन से तो न्यारा हो सकता हूं ना। भले आत्मा जब मरने की घड़ी आएगी आत्मा निकल जाएगी वो अलग बात है, लेकिन शरीर में होते हुए भी शरीर से न्यारी अवस्था रह सकती है। जैसे रात को हम गहरी नींद में सो जाते हैं तो शरीर का कोई भान नहीं होता है, आत्मा भी वो उस समय जैसे सुषुप्त अवस्था में है, शरीर के अंग सब काम कर रहे हैं, श्वास चल रहा है, भोजन पच रहा है, सब कुछ होता है, लेकिन आत्मा अपने सुषुप्त अवस्था में है, विश्राम में है। तो जब ये भी एक अनुभव है तो देह में होते हुए भी आत्मा न्यारी अपने आप को अनुभव कर सकती है। तो जैसे टाइट वस्त्र पड़े हो तो कितना मुश्किल होता है उतारना, और ढीले वस्त्र पड़े हो तो सहज होता है उतारना। तो शरीर को हमने आज इतना टाइट बना लिया है जो इससे न्यारा होना आता ही नहीं है। अब राजयोग में हम ये अभ्यास करते हैं कि मैं एक आत्मा हूं, एक ज्योति हूं, प्रकाश का पुंज हूं, चमकता हुआ सितारा हूं, इस शरीर की इंद्रियों का मालिक हूं। और कहां हूं मैं आत्मा, यहां भ्रकुटी के बीच में चमक रहा हूं, और यहां उपस्थित होके शरीर की इंद्रियों को मैं शक्ति दूं, कंट्रोल रूम यहां है, कंट्रोलर यहां है, और यहां से मैं शक्ति प्रदान करूं, कर्म इंद्रियों से कर्म करूं, अब नहीं करना है तो विड्रॉ कर लो, न्यारे हो जाओ, मैं आत्मा शांत स्वरूप शुद्ध स्वरूप प्रेम स्वरूप अपने आत्म चिंतन में स्थित हो जाओ। तो इसीलिए स्वयं को आत्मा निश्चय कर परमात्मा को यथार्थ रूप से याद करना, ये राजयोग मेडिटेशन है। केवल ऐसे ही नहीं पुकारना परंतु उनको यथार्थ रूप से याद करना, क्योंकि राजयोग माना परमात्मा की यथार्थ याद। और कौन करने वाली है? आत्मा। किसको करने वाली है? उस परमात्मा को। अब ये कैसे संभव हो, उसके लिए हमें समझना होगा। कई लोग जब हम उनको कहते आप मेडिटेशन कीजिए, राजयोग मेडिटेशन, तो कहते हम, मैं तो करता हूं, 40 साल से कर रहा हूं मैं। पर 40 साल से क्या कर रहे हो वो तो पता नहीं। तो कहते बस मैं तो अपने मन को बस शून्य कर देता हूं, कुछ भी नहीं सोचता हूं, ब्लैंक बन जाता हूं। क्योंकि कई लोग यही समझते हैं कि मेडिटेशन करना माना एकदम अपने मन को शून्य बना देना, कुछ नहीं सोचे, ब्लैंक ब्लैंक बन जाओ। अब ब्लैंक तो मन होगा ही नहीं, क्योंकि अगर आप ये मन में कहते हैं कि मुझे कुछ भी नहीं सोचना है, कुछ भी नहीं सोचना है, कुछ भी नहीं सोचना है, तो ये भी तो सोच मन में चल ही रहा है ना कि नहीं, कि कुछ नहीं सोचना है, क्योंकि मन का तो काम ही सोचना है। आप मन को कितनी देर तक शून्य बना सकेंगे? नहीं बना सकेंगे। तो जिसका काम ही सोचना है तो उसको सोचना तो पड़ेगा ही। सोचना कोई बुरी चीज नहीं है, पर क्या सोचना है उसको हमें समझना होगा। इसीलिए कोई सोचते है मन को शून्य करना बस यही मेडिटेशन है, ये नहीं है। मन एक बहुत बड़ी शक्ति है, जिस मन के लिए कहा गया मन के हारे हार, मन के जीते जीत, मन जीते जगत जीत। तो मन जीतने का मतलब ये नहीं है मन को मारना, मार दिया तो जीत लिया क्या? पर मन मेरा दुश्मन थोड़ी है जो मैं उसको मारूं, मन तो मेरा मित्र है, क्योंकि यही मन रूपी मित्र मुझे ईश्वर से मिलन का अनुभव कराएगा। वो तो हमने सोचा ही नहीं, इसीलिए तो भगवान ने यही कहा है अर्जुन इस मन को मेरे में लगाओ। तो मन को मारना नहीं है, पर मन को मोड़ना है, मन का दमन नहीं करना है, लेकिन मन को सुमन करके अमन करना है। सुंदर विचार आत्मा के परमात्मा के मन में लाकर फिर मन को उस ईश्वर में लगाना है। इसीलिए शून्य करना ही मेडिटेशन नहीं है। फिर कोई कहते हैं इसमें तो क्या मन पर दबाव डालना है? हम कहते हैं दबाव भी नहीं डालना है, नेचुरल हो, स्वाभाविक हो, और चलते फिरते हो, खाते पीते भी ये हो सकता है। जैसे बच्चा अपने माता पिता को कैसे याद करता है, टीचर को, स्टूडेंट कैसे याद करता है, भूल थोड़ी सकता है। स्त्री अपने पति को कैसे याद करती है, माना कि एक नेचुरल चीज है, क्योंकि संबंध है, या संबंध है वहां मन स्वाभाविक रूप से वहां जाता है। तो परमात्मा के साथ भी आत्मा के सब संबंध है, इसीलिए कि मन पर दबाव डालने की बात नहीं है। फिर कोई कहते हैं मन तो बहुत चंचल है इसलिए मेडिटेशन हम नहीं कर सकते, सीधा जवाब दे देते हैं मेरे से नहीं होगा, मेरा मन तो बहुत चंचल है। तो क्यों मन चंचल है? क्योंकि बहुत नेगेटिव थिंकिंग है। परंतु अगर ये कला आ जाए, तरीका आ जाए पॉजिटिव सोचने का, तो मन क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि नेगेटिव थिंकिंग में मन बहुत तेज चलता है। परंतु जैसे हमको ये ज्ञान मिलता है, आत्मा परमात्मा की समझ मिलती है, तो मन उस सकारात्मक स्वरूप में सोचने लगता है। तो उसकी स्पीड तो कम ही होगी, पॉजिटिव थॉट्स की स्पीड कम होती है, नेगेटिव की बहुत फास्ट होती है। इसलिए कोई दबाव भी नहीं डालना है और चंचल कह करके छोड़ना भी नहीं है। कई फिर कहते हैं क्या इसके लिए आसन लगाने पड़ेंगे, मुझे तो पद्मासन तो होता नहीं है, बहुत घुटनों में दर्द होता है, मैं पद्मासन कैसे करूंगा, शीर्षासन कैसे करूंगा? हम कहते हैं उसकी भी जरूरत नहीं है, मन का आसन सीख लो। मन का आसन कैसा होता है? पद्मासन की बजाय पद्म जैसा जीवन बन जाए, कितनी ऊंची चीज है। शीर्षासन करने की बजाय, यानी सिर पर बैलेंस करने की बजाय, मन का बैलेंस हो, कितनी ऊंची चीज है ये। तो इसीलिए आसन की भी कोई जरूरत नहीं, सुख आसन, जिस स्थिति में आप आधा घंटा आराम से बैठ सको वही आसन है, सुखासन है। फिर कई कहते हैं कि हम चाहते तो हैं लेकिन जहां हम रहते हैं ना वहां बहुत आवाज है, चारों तरफ बहुत आवाज, इसलिए मेरे से तो होगा नहीं, शांति नहीं है, एकांत नहीं है। तो हम कहते कोई बात नहीं, मेडिटेशन करने लिए शांत वातावरण की भी जरूरत नहीं। हाँ, ज्ञान सुनने के लिए शांत वातावरण चाहिए, क्योंकि नहीं तो दूसरी आवाज कान में जाएंगे तो ये नहीं सुन पाएंगे। अब यहाँ मोबाइल 100 बजते रहेंगे तो क्या होगा, कैसे सुन पाएंगे ये। इसलिए हम कहते मोबाइल स्विच ऑफ करके क्लास में आओ, या साइलेंट मोड पर रखो अगर जरूरी है तो, नहीं तो स्विच ऑफ ही करो, नहीं तो आवाज होगा तो डिस्टर्बेंस होगी। पर मेडिटेशन करने के लिए वो आवाज हमको आकर्षित नहीं करे, क्योंकि मन तो एक लगन में मगन है। फिर कई कहते हम क्या आंखें बंद करनी होती है, हम कहते नहीं, आंखें खुली रख के भी आप कर सकते हो। जैसे आप किसी को याद करते हो तो जरूरी नहीं है कि आंख बंद करके उसको याद करते हो, आंखें खुली होती है काम काज करते हैं, लेकिन मन की आंख तो उसको ही देखती है, जो आप कर रहे हो उसको नहीं देखती है, उसी को ही देखती है जिसको याद कर रही है। तो ये आंखें भल ये संसार देख रही, लेकिन मन की आंख परमात्मा को देखिए, तो भले आंखें खुली रहे ना, काम को छोड़ना थोड़ी है, कर्म भी करना है पर मन ईश्वर में लगाना है। फिर कई कहते हैं कि क्या हम अपने श्वास पर ध्यान केंद्रित करना होगा, हम कहते हैं वो भी जरूरी नहीं है, श्वास आपका जैसे चल रहा है चलने दीजिए। प्राणायाम जो करते हैं उसके पीछे एक लक्ष्य होता है कि ऑक्सीजन का संचार सारे अंगों में जाए, हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से वो एक अलग चीज है, लेकिन मेडिटेशन करने के लिए श्वास पर ही ध्यान केंद्रित करना ये आवश्यक नहीं है। लेकिन ये जो प्राण है इससे भी ऊंचा वो प्राणों का भी प्यारा परमात्मा है, और सच्चा प्राण तो आत्मा है, प्राणी आत्मा को कहते हैं। ये तो श्वास चलता है, हम लेते हैं छोड़ते हैं, तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, पर मैं कौन हूं, सच्चा प्राणेश्वर परमात्मा की आत्मा जो सचमुच प्राणी है, शरीर तो विनाशी चीज है। फिर कोई कहते हैं कि ये अच्छा तो लगता है लेकिन जल्दी ऊब जाता हूं, बोर हो जाता हूं। तो क्यों बोर हो जाते हैं, क्योंकि एक मंत्र मिल गया और कहा जाएगा कि ये मंत्र आप 1,00,000 बार जाप करना, बस किसी ने ये मंत्र आपको दिया, ये मंत्र आप 1,00,000 बार सारे दिन में जाप करना, तो जप योग जाप करते रहेंगे वही मंत्र। अब 1,00,000 की गिनती तो कोई कम तो नहीं है, हर एक समय तो 1,00,000 गिनती भी नहीं कर सकेंगे, जाप कर सकेंगे तो बीच में रुकेंगे, फिर एक समय पर 1,000, 2,000, 5,000, 10,000, 20,000 समझो जो कुछ भी, फिर गिनते रहेंगे कि कितना हुआ, 100,000 होता है 1,00,000, और सारे दिन में 1,00,000 की गिनती पूरी करनी है, तो गिनते गिनते 1,00,000 होगा, कहेंगे हाँ आज मेरा जाप पूरा हुआ। अब थोड़ा सोचने की बात है कि 1,00,000 की गिनती के बाद जाप पूरा हुआ तो योग किसके साथ हुआ, परमात्मा के साथ हुआ या गिनती के साथ हुआ, किसके साथ होता है, हा? गिनती के साथ हो गया, ईश्वर के साथ तो हुआ ही नहीं ना। कोई ऐसी पत्नी होगी जो पति के लिए सोचेगी मुझे उसको केवल 10 बार ही याद करना है, 20 बार ही याद करना है सारे दिन में, फिर गिनेगी मैंने कितनी बार उसको याद किया, ऐसे करती है क्या? वो भूल कैसे सकती है, क्योंकि वो जानती है मैं किसकी पत्नी हूं। इसलिए जाप योग या जप योग जो कहते हैं उसमें क्यों बोर हो जाते हैं, क्योंकि गिनती मिली और उस गिनती में तो कोई रचनात्मकता तो कुछ है ही नहीं, वही रटना है। और मन और बुद्धि को तो कुछ रचनात्मकता चाहिए, नहीं तो बोर हो जाएगा मन। इसलिए राजयोग में वो रचनात्मकता है। मान लीजिए किसी ने कोई मंत्र दे दिया ओम नमो शिवाय, अब बोर क्यों होते क्योंकि बस वही रखते रहते ओम नमो शिवाय ओम नमो शिवाय ओम नमो जो भी है, परंतु इसकी गहराई क्या है, ओम नमो शिवाय का अर्थ क्या है। मन बुद्धि को वो चाहिए, फूड फॉर थॉट। ओम नमो शिवाय का अर्थ है कि मैं शिव को नमस्कार कर रहा हूं। अब मैं शिव को नमस्कार करने वाला मैं कौन, फिर जो जिस शिव को मैं नमस्कार कर रहा हूं वो शिव कौन, फिर उसके साथ नमः, नमस्कार करने के लिए नम्रता चाहिए, आत्मा का भी ज्ञान चाहिए। मैं आत्मा उस शिव को नमस्कार कर रही हूं तो मैं आत्मा उस नम्रता से परमात्मा शिव को पहचान कर मैं उनको नमः करूं। लेकिन न आत्मा का ज्ञान न शिव परमात्मा का ज्ञान न नमः करने के लिए नम्रता है। अभिमान में मैं तो सेठ हूं, मैं तो साहूकार हूं, मैं तो बहुत बड़ा ये मालिक हूं, ये हूं वो हूं, न जाने क्या क्या अभिमान हम जताते हैं और फिर सोचते हैं कि मेरा मंत्र सार्थक क्यों नहीं हुआ, क्योंकि मन तो भटकता ही रहा। क्योंकि हाथों को आपने काम दिया, उंगलियों को काम दिया, फिर मुख को भी काम दिया, होठों को काम दिया, चलो शिवलिंग भी आपके सामने हो, कोई मूर्ति का आप ध्यान कर रहे हैं, उनका जाप कर रहे हैं, वो भी आपके सामने हो आंखों के, तो आंखों को भी काम दिया, उंगलियों को काम दिया, होठों को काम दिया, लेकिन मन को तो काम दिया ही नहीं, मन और बुद्धि को तो काम मिला ही नहीं। तो मन और बुद्धि तो बेलगाम घोड़ा होके भटकेंगे, उनको काम चाहिए। तो राजयोग में हम मन बुद्धि को काम देते हैं, समझ। मन माना सोचने की शक्ति, बुद्धि माना समझने की शक्ति, फिर समझ करके मन को दिशा देवे बुद्धि, बुद्धि लगाम मन घोड़ा, तो बुद्धि लगाम बन करके मन को दिशा दे कि हे मन तुमको अभी कहाँ जाना है, परमात्मा के पास जाना है, अपने आप को पहचानना है। इसलिए बोर होंगे ही नहीं। परंतु फिर कई लोग ये बातें नहीं समझते हैं तो कहते नहीं नहीं हम ये तो बड़ा मुश्किल है, हम नहीं कर सकते। वो तो राजयोग क्या है, वो सरल एक शब्द में आत्मा समझकर परमात्मा को याद करना, जैसे बच्चा अपने पिता को याद करता है। मैं आत्मा भी परमात्मा की संतान हूं, जैसे पिता देह रूप में है तो मैं भी देह रूप में हूं, तो देह को याद कर रही है पर करती तो आत्मा ही है। अब मैं विदेह बन करके आत्मा निश्चय कर उस परमात्मा को याद करूं, वो भी एक आत्मा ही है, परम आत्मा है, ज्ञान गुण शक्तियों में परम है। तो मेरा मन परमात्मा में तब लगेगा जब ये कुछ आधार हमारे मन में होंगे। जैसे किसी व्यक्ति के लिए भी, उसको भी अगर हम याद करते हैं, किसी को भी याद करते हैं, तो पहले उसकी पहचान चाहिए। बिना पहचान के हम उसको कैसे याद करेंगे। दुनिया में करोड़ों इंसान हैं, करोड़ों इंसानों को तो हम याद नहीं करते हैं, लेकिन जिनको हम पहचानते हैं उनको याद कर सकते हैं। फिर उनमें से भी जिनसे हमारा संबंध है उनको हम याद करते हैं, जिनसे संबंध ही नहीं है हम क्यों याद करेंगे, भले पहचानते हैं। फिर संबंध भी अनेकों के साथ होता है तो भी उन सबको नहीं याद करते हैं, उनमें भी जो बहुत निकट है जिनसे प्यार है उनको याद करते हैं। और ऊंची चीज जिनसे कुछ प्राप्ति होती है, भले संबंध भी नहीं है लेकिन प्राप्ति है उनसे, उनको तो कभी भूलेंगे ही नहीं। कई बार ऐसे होता है ना कि हम आपस में बैठे हैं और किसी व्यक्ति को याद कर रहे हैं, उसका नाम ले रहे हैं फलाना ये आदि आदि, और उसी समय वो व्यक्ति पहुंच जाता है और हम उसको कहते हैं अरे कितना अच्छा हो, आपकी उम्र बहुत बड़ी है, देखो अभी अभी हम आपको याद कर रहे थे आप आ गए। तो सबसे पहले वो यही प्रश्न करेगा, क्यों याद कर रहे थे, क्या काम था, क्यों याद कर रहे थे, यानी कुछ काम था, यानी कुछ उनसे कुछ प्राप्ति हुई है पहले। ये व्यक्ति ना यही कर सकता है, क्योंकि आत्मा को अनुभव है कि इस व्यक्ति ने पहले भी ये किया है तो अभी भी कर सकता है, इसलिए उसको याद किया, क्योंकि उनसे कुछ प्राप्ति है। तो हम याद किसको करते हैं, जिससे कुछ प्राप्ति होती है। फिर जिससे प्रेम होता है उसकी याद तो अपने आप आती है, अपने आप आती है, मन में चित सोचते भी नहीं, अपने आप उसकी याद आती है, क्योंकि प्यार है उनसे। और जहां संबंध की बात है, प्यार और प्राप्ति तो है, लेकिन संबंध इतना घनिष्ठ होता है, जो कई बार वो व्यक्ति संसार से चला भी गया, अभी नहीं है वो जीवित, लेकिन हम उसको भूल नहीं सकते हैं, क्योंकि संबंध इतना घनिष्ठ था। और फिर क्या कहते, क्या करो, मुझे उनकी याद सता रही है। बहुत दूर कोई होता है तो भी याद सताती है, तो जहां संबंध है वहां याद सताती है, जहां प्रेम है वो याद अपने आप आती है, और जहां कुछ प्राप्ति है वहां आप याद करते हो। अब परमात्मा की याद कैसी होनी चाहिए, सिर्फ करने वाली, आने वाली, सताने वाली, ये नहीं, इनसे ऊंची याद है। क्योंकि करने वाली, आने वाली, सताने वाली, ये तो कई बार दुखदाई याद भी हो सकती है, दुखदाई बन जाती है। समझो हमने किसी को याद किया उसकी प्राप्ति के आधार पर, उनसे कुछ मिलता है, अब याद तो किया हमने और वो पहुंच गया और कहेगा कि क्यों याद कर रहे थे, क्या काम था, और हम कहेंगे भाई बात ऐसी है, पिछली बार आपने हमको मदद की थी तो सोचा कि अब की बार भी ये जरूरत है तो आप हमको मदद कर सकते हो। अब जैसे ही वो सुनेगा वो कहेगा माफ करना, उस समय तो मेरे पास बहुत टाइम था, बहुत धन था, बहुत कुछ था, अभी तो मेरे पास भी वो शक्ति नहीं है, अभी मैं नहीं कर सकता हूँ। तो वो समय अलग था जबकि अभी नहीं कर सकता है, पर जैसे ही हम सुनेंगे वो नहीं कर सकता है तो जो उसको याद किया उसे तो दुख ही मिला। तो प्राप्ति तो पहले हुई, अब तो नहीं हो रही है तो खुशी क्या मिली, दुख ही मिला। इसलिए कई बार हम भगवान को याद करते हैं और सोचते हैं भगवान ये देगा, ये देगा, वो देगा, लेकिन फिर देखते हैं कि भगवान से तो मिला ही नहीं, तो भगवान को फिर हम दुखी होकर के कहते हैं भगवान तुम कितने निर्दयी हो, तुम हमारा सुनते नहीं हो, आदि आदि, क्या बहरे हो, वो दुख जताते हैं। मिला तो कहेंगे भगवान तुम बहुत अच्छे हो, तो भगवान के साथ भी ऐसा ही रिश्ता हो जाता है। और प्रेम तो आजकल है ही नहीं, सचमुच अगर किसी से प्रेम है भी ना, ये सब झूठा है। सचमुच देखो दिल क्या किसी को देते हैं, दिल दिया दर्द ही लिया, ये समझ लो। ये गीत भी है, दिल के टुकड़े हजार, कोई यहां गिरा कोई वहां गिरा। चलो किसी से प्रीत की भी और उसकी याद बहुत आती है, एक दिन तो वो संसार से चला जाएगा, कहाँ तक वो प्रीत निभा सकता है, हर एक इंसान विनाशी है। और ये जितने भी संबंध है ये सब कर्मों अनुसार है, जब कर्मों का हिसाब किताब पूरा हुआ, संबंध भी पूरे हुए, प्यार भी खत्म पूरा हुआ, भले आप रोते रहो फायदा कुछ भी नहीं होगा। किससे प्यार था, शरीर से प्यार था तो रख लो उसके शरीर को, पर रख भी तो नहीं सकते, पंच तत्वों को वापस करना है। अगर आत्मा से प्यार था तो आत्मा तो मरती नहीं है, तो भी रोने की तो बात ही नहीं है, वो तो अविनाशी शक्ति है, तो किसके लिए रो रहे। वास्तव में देखा जाए हमारा ये अंदर का स्वार्थ है जिसके कारण हम रोते हैं। सच पूछो तो प्रेम नहीं है, स्वार्थ है। क्योंकि एक बिल्कुल एक नेचुरल चीज है, समझो बहुत निकट था आपके और उसकी मृत्यु हो गई, तो पहला संकल्प आपको यही आएगा, अब मेरा क्या होगा। है ना माता है? अब मेरा क्या होगा, क्योंकि मुझे ये देता था, ये करता था, ये मिलता था, सब कुछ इनसे होता था, अब मेरा क्या होगा। तो ये कौन सा संकल्प है? ये स्वार्थ है ना कि नहीं है? है कि नहीं है? है या नहीं है? है, बिल्कुल है। तो वो प्रेम कम था, स्वार्थ ज्यादा था। थोड़ा सोचने की बात है। और चलो प्रेम भी हो, क्यों ना हो, लेकिन हिसाब किताब कर्मों के अनुसार ही संबंध बनता है। और जब हिसाब किताब कर्मों का पूरा हुआ, कोई भी किसी का नहीं है, ये कड़वा सत्य है। इसीलिए कहा जाता है सच्चा प्रेम करना है तो ईश्वर से करो, वही सच्चा साथी है, वही अंतिम साथी केवल नहीं है पर सच्चा साथी है। और उस सच्चे साथी को अगर सदा याद करते रहेंगे तो कभी दुख के आंसू नहीं बहाएंगे, वो कभी हमें धोखा नहीं देगा। इंसान तो धोखा दे देगा, क्योंकि उसकी अपनी भी हदें होती है, लिमिट्स है। तो इसीलिए परमात्मा कहते हैं सच्चा संबंध तो मेरे साथ ही है तुम्हारा, अविनाशी संबंध, सच्ची प्रीत मेरे से ही जोड़ो। हम भक्ति मार्ग में ईश्वर से प्रीत जोड़ने की कोशिश तो करते हैं, कैसे? कीर्तन गाते हैं, भजन गाते हैं, ये कीर्तन भजन स्तुति महिमा ये सब ईश्वर से प्रेम जताने के लिए करते हैं। जैसे किसी से प्रेम होता है तो हम उसकी स्तुति गाएंगे, क्यों नहीं, महिमा करेंगे। लेकिन होता क्या है कि स्तुति गाते गाते हम कुछ न कुछ उनसे मांग लेते हैं, हे भगवान आप करुणा के सिंधु हो, रहम दिल हो, दया के सागर हो, मुझ पर भी थोड़ी दया करो। करो माना ये स्वार्थ हो गया, ये भी ये मुझे भी दो, आप तो हो ही। जैसे किसी बड़े व्यक्ति के पास हम जाते हैं और सोचते हैं इनसे कुछ हमें लेना है लेना है, पर ऐसे कैसे मांग लेंगे, तो पहले तो उनकी महिमा गाएंगे, आप है ना बहुत महान हो, आप ये हो, आप कितना बड़ा कार्य करते हो, ये करते हो वो करते हो, और समझते हो कि मैं उसको खुश करूं पहले ये कह करके। अब वो तो समझ जाता है कि मुझे खुश करने की कोशिश कर रहा है, पर जो बड़े आदमी होते जिनके पास बहुत समय नहीं होता है, वो कहते हैं कि ये सब जरूरत नहीं है, काम की बात करो, क्या चाहते हो आप बहुत महिमा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत महिमा केवल की वजह से मस्का लगाना है, मस्का लगाते हैं ना, मक्खन लगाते हैं तो जरा नरम हो जाए, उसका दिल पिघल जाए मेरे प्रति तो हमारा काम कर दे। तो अगर केवल स्तुति गाई और फिर कुछ मांग लिया, अब ये भी तो स्वार्थ हुआ ना, सच्चा प्यार तो नहीं है। जहां सच्चा प्यार होता है वहां मांगा नहीं जाता है, वहां तो कुर्बानी होती है, वहां तो त्याग होता है, सैक्रिफाइस है वहां। और अगर सचमुच चलो कोई माने प्यार भी है तो वो वन साइडेड थोड़ी होता है, खाली एक से ही लेना थोड़ी होता है, खुद को भी देना होता है। परिवार में भी हम देखते हैं पति पत्नी का भी संबंध है, अगर पत्नी केवल स्वार्थवश मांगती रहती है कुछ त्याग है ही नहीं उसका, तो वो प्यार भी कब तक चलेगा। या पति भी केवल मांगता ही रहता है लेकिन उसकी तरफ से कुछ त्याग नहीं है, तो वो प्यार भी बहुत समय नहीं चलेगा। एक परस्पर संबंध में परस्पर लेन भी हो देन भी हो, देना भी होता है, त्याग भी एक बहुत बड़ी चीज है, जिससे प्रीत होती उसके लिए तो न्योछावर हो जाते हैं। तो परमात्मा से हमारी सच्ची प्रीत है या केवल स्वार्थ है? स्वार्थ से भी और क्या चीज है? सौदा है। हे भगवान, तो मेरा ये काम कर दो तो मैं 100 रुपए का प्रसाद चढ़ा दूंगा। ये बिजनेस डील, बिजनेस करते हैं, तुम ये करना तो मैं ये करूंगा, इतना ये सौदा पक्का इस अनुसार। तो भगवान का अगर काम कर देगा तो 100 रुपए का प्रसाद चढ़ाएंगे, नहीं किया तो भगवान को प्रसाद भी नहीं चढ़ाएंगे, भूखा रखेंगे। हाँ, तुमने मेरा काम नहीं किया ना, इसलिए मैं तुम पर प्रसाद नहीं चढ़ाऊंगा। भगवान कहेगा मत चढ़ाओ, मेरे तो बहुत भक्त है, तुम नहीं चढ़ाओगे तो मेरा कोई कमी, मुझे कोई कमी थोड़ी है। तो इसीलिए इस प्रकार का संबंध भी ईश्वर से नहीं होना चाहिए, ये हमको परमात्मा से दूर करेगा। तो राजयोग में क्या ये 4 आधार हम अपनाते हैं? पहले आत्मा परमात्मा की सही पहचान चाहिए, ये पहला आधार है मन को परमात्मा में ले जाने के लिए। आत्मा ही उसको याद कर रही है, इसलिए देह भान को भूलना पड़ेगा, ये त्याग चाहिए पहले। देखो मंदिर में आप जाते हैं, मंदिर में जाने से पहले पहला त्याग क्या करते हैं? चप्पल बाहर उतारते, चप्पल पहन के तो नहीं जाएंगे ना मूर्ति के सामने, पहला त्याग चप्पल उतारो। चप्पल उतारना माना ये देह अभिमान रूपी जो रबर है ना, चमड़ा है, इसको पहले बाहर निकालो। कई मंदिरों में तो जो कपड़े पहने सूट कोट पैंट ये सब भी नहीं चलेगा, धोती पहन के जाना पड़ता है सब, यानी अपना अभिमान छोड़ना पड़ता है। तो ये देह का अभिमान एक बहुत बड़ा विघ्न है राजयोग में। जैसे हम तार को तार से जोड़ते हैं करंट पास कराने के लिए, मीटर में वो कॉपर की तांबे की तार होती है जो तांबे से जोड़नी होती है। अब अगर तांबे को तांबे से जोड़ना चाहते पर तार पर रबर लगा हुआ है और हम सोचते ऐसे ही जोड़ दें तो करंट थोड़ी पास होगी, करंट पास करने के लिए रबर को हटाना पड़ेगा, वो बैड कंडक्टर है। तो ये शरीर भी बीच में विघ्न है। तो जब तक अपने को आत्मा नहीं समझा तब तक मन परमात्मा में नहीं लगेगा। तो दूसरा आधार संबंध। अब परमात्मा से वास्तव में अनादि अविनाशी तो संबंध है ही, लेकिन कहीं टूट गया है। जैसे अभी बिजली चल रही है, पंखा चल रहा है, माइक चल रहा है, माना पावर हाउस से कनेक्शन है, पर अचानक सब बंद हो जाए तो क्या कहेंगे? हाँ, फ्यूज उड़ गया। तो फ्यूज उड़ गया तो बिजली बंद हो गई, पावर हाउस से आना बंद हो गया, तो फिर फ्यूज को जोड़ना पड़ता है। तो परमात्मा जो शांति प्रेम सुख का सागर है, उनसे जो हम अधिकार रूप में शांति प्रेम पाएं, जैसे बच्चा अपने पिता से पाता है, वो नहीं अनुभव होता है। तो आवश्यकता ये नहीं कि हम मांगे, लेकिन आवश्यकता है वो संबंध को फिर से जोड़े। तो बिजली चली गई तो मीटर को देखना होता है कि भाई फ्यूज तो नहीं उड़ गया, क्योंकि दूसरे कमरे में तो आ रहा है, दूसरे हॉल में तो आ रहा है, यहाँ क्यों नहीं चल रहा है? तो वो मीटर जो है वो उसको चेक करेंगे। रेडियो ऑन करने से रेडियो स्टेशन थोड़ी मिलेगा, ट्यूनिंग करनी पड़ती है। ट्यूनिंग करने से वो संबंध जुड़ेगा, तो ट्यूनिंग कैसे करनी है ताकि परमात्मा से हमारा फिर से संबंध जुड़े, वो आपको बता रहे हैं। फिर उसके बाद वो सच्चा प्रेम चाहिए जो निस्वार्थ हो। इसलिए हम कहते हैं परमात्मा की याद केवल आने वाली, करने वाली, सताने वाली बात नहीं है, पर ये समाने वाली याद है। परमात्मा में मन ऐसा लग जाए जो उसमें समा जाए, जिसको ही भक्तों ने कह दिया आत्मा परमात्मा में विलीन हो गए। ये विलीनता की अवस्था योग की अवस्था है, समाने वाली याद। सताए क्यों, आए क्यों, करे क्यों, ये भी मेहनत क्यों, समाए हुए हैं। और यही सच्चा प्रेम है, खोए हुए हैं। इसीलिए इंग्लिश में कहते हैं लॉस्ट इन लव। पर दुनिया में जो लव है, प्रेम है, उसके लिए शब्द दूसरा यूज करते हैं, फेल इन लव, फॉल इन लव। वहां तो गिरते हैं, गिरना होता है, लॉस्ट नहीं होते, गिरते हैं। लेकिन परमात्मा से सच्ची प्रीत माना उनके प्रेम में खो जाओ। अब वो क्या है, उसके अलग अलग स्टेप्स है जो आपको कल सुबह बताया जाएगा। और जहां ये खो गए तो फिर प्राप्ति प्राप्ति है। बूंद सागर में समा गई तो सागर सम बन गए, प्राप्ति प्राप्ति है। अब ये चार आधार को जब हमने देखा तो हम ये फिर से समझेंगे कि मैं आत्मा क्या हूं। एक ज्योति हूं, प्रकाश का पुंज हूं, चमकता हुआ सितारा हूं। और ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद, शक्ति, ये सात मूल गुण हैं मेरे। इनको कोर वैल्यूज कहते हैं, कोर वैल्यूज। और इन्हीं सात गुणों के आधार पर संसार के जितने भी मूल्य हैं वो आधारित है। चाहे वो पारिवारिक मूल्य हो, चाहे सामाजिक मूल्य हो, चाहे कोई राजनीतिक मूल्य हो, चाहे प्रोफेशन के मूल्य हो, किसी भी प्रकार के मूल्य, ये सात मूल्यों के आधार पर ही वो आधारित होते हैं। और ये आत्मा के अंदर ही निहित है, ये गुण कहीं से लेने नहीं होते हैं। आत्मा इन्हीं गुणों का स्वरूप है। और जैसे हमको ये निश्चय हुआ, फिर हम महसूस करते कि मैं आत्मा इस शरीर की इंद्रियों का मालिक हूं। तो मेरा ये टेम्पररी एड्रेस है यहां। तो सहज हम अपने आप को इन अंगों से जो इतना उसमें फंसे हुए हैं, मैं न्यारा बना सकती हूं। मैं आत्मा यहां विराजमान हूं, दिव्य ज्योति स्वरूप। ये शरीर मेरा एक वस्त्र है, इनसे मैं न्यारी हूं। और फिर आत्मा अपने परमधाम को याद करती है, जहां से मैं आत्मा आई हूं। हम आत्माओं का वही धाम है। इसीलिए आत्माएं कई बार ऐसे होता है, बहुत दुखी होते हैं तो भगवान को कहते हैं, भगवान उठा लो मुझे इस संसार से, नहीं जीना है। यानी आत्मा अपने घर को याद कर रही है। जैसे होमसिक हो जाते हैं ना, घर से बहुत दूर होते हैं तो घर याद आता है, तो आत्मा को भी वो परम धाम याद आता है कि मैं आत्मा उस घर में तो बहुत शांति में हूं, इसलिए भगवान उठा लो मुझे इस दुनिया से। लेकिन राजयोग में हम कहते हैं उठा लो, ये दुखी हो के भगवान को मत कहो, उसकी बजाय मन से चले जाओ, वहां आपका ही घर है। अब यहां आप बैठे हैं, जहां जहां से आप आए हैं महाराष्ट्र से, ये थोड़ा अगर आपको मन से अपने घर में जाना है तो क्या घर में पहले पूछेंगे क्या मैं मन से आऊं वहां? मन से तो आप एक सेकंड में चले जाएंगे। और घर जाने लिए निमंत्रण थोड़ी चाहिए आपको, आपका ही घर है। तो मन से पहुंच जाओ और ऐसे महसूस करो अखंड ज्योति का महतत्व, और मैं उसमें चमकता हुआ एक सितारा विराजमान। और इस संसार में मैं क्यों आया हूं, आया वहीं से हूं, इस संसार में मेहमान हूं। ये दुनिया एक मुसाफिर खाना है, मैं मुसाफिरी पर हूं। ये एक संसार मेरा घर नहीं है, ये दुनिया एक रंगमंच है, आत्मा एक्टर है इसमें, एक्टिंग करने के लिए आए हैं। और इस एक्टिंग में ये शरीर रूपी वस्त्र पहना है, और इस एक्टिंग में हमको क्या एक्टिंग करनी है, लक्ष्य क्या रखना है, जो जो हमारा कर्तव्य है वो तो निभाना ही है, लेकिन हमारा लक्ष्य क्या हो कि जो भी हमारे कर्म हो उन सब कर्मों में, वचन में, मन में ये सातों ही गुण हम बांटें, मन से, वचन से, कर्म से शांति बांटे, प्रेम बांटे, खुशी बांटे, शक्ति बांटे, और इन गुणों की विशेषता जितना ये बांटेंगे औरों को देंगे मन वचन कर्म से, उतना ये हमारे बढ़ेंगे, कोई कम नहीं होंगे। स्थूल चीजें बांटने से तो कम होगी, पर ये गुण ऐसा धन है आत्मा का जो बांटने से बढ़ता है। तो जैसे मुझे ये पता चला मैं आत्मा यहां इसलिए संसार में आई हूं, बाकी ये संसार की चीजें न मेरी थी न मेरी होगी, न मैं लाई हूं न लेके जाऊंगी, ये मूल्यों को कभी नहीं हमें गंवाना है, ये मेरी अपनी प्रॉपर्टी है, कोई हमसे छीन नहीं सकता जबरदस्ती हमारे परमिशन के बिना। इसलिए जैसे मैंने ये समझा, फिर हम समझने लगते हैं कि मैं आत्मा किसकी संतान हूं, जिनको हम शिव बाबा कहते हैं, वो निराकार ज्योति स्वरूप शिव परमात्मा, जो रूप में ज्योति बिंदु है, गुणों में सिंधु है, उस सिंधु परमात्मा के हम आत्माएं बिंदु संतान है। वो शांति का सागर, मैं शांत स्वरूप, वो प्रेम का सागर, मैं प्रेम स्वरूप, वो आनंद का सागर, मैं आनंद स्वरूप। और जैसे मैंने ये निश्चय किया, महसूस होता है घर भी एक ही है, जो परमात्मा के गुण है वो मेरे गुण है, जो उनका घर है वो मेरा ही घर है, तो आपका ट्यूनिंग हो जाएगा परमात्मा से, सेम फ्रीक्वेंसी, सेम वेवलेंथ, सेम मीटर बैंड हो, तब मैच हो, और तब हम रेडियो की आवाज सुन सके उस स्टेशन से। इसलिए परमात्मा का सही परिचय जैसे ही हमें मिला और उसके आधार से हम परमात्मा से ट्यूनिंग करने लगते हैं। तीन प्रकार की समानता है आत्मा और परमात्मा में। एक समानता है स्वरूप की समानता, आत्मा भी ज्योति बिंदु स्वरूप है, परमात्मा भी ज्योति बिंदु स्वरूप है। अब तक इस स्वरूप का या समानता का पता ही नहीं था, हमने सोचा परमात्मा का तो ना नाम है, ना रूप है, ना गुण है, कुछ भी नहीं, और मैं तो फलाना, नाम, रूप, धर्म, जाति, कितना अंतर, तो मिलन कैसे होगा। अब राजयोग से पता चला कि एक जैसा ही स्वरूप है, मेरा भी उस परमात्मा की तरह है। इसलिए कई लोग आत्मा सो परमात्मा कह देते हैं, लेकिन आत्मा सो परमात्मा नहीं, क्योंकि परमात्मा माना परमात्मा, वो ऊंचे से ऊंची आत्मा, पर स्वरूप तो दोनों का एक जैसा ही होगा ना। फिर दूसरी समानता है कि घर भी एक ही है, हम भी उसी घर से आए हैं। कई कहते परंतु उस घर को तो हमने देखा नहीं है, परम धाम को, हम कहते क्यों नहीं देखा है, वहीं से तो आए हो। एक छोटा बच्चा कहे कि मैं कहाँ पैदा हुआ, मैंने तो देखा नहीं वो घर जहाँ मैं पैदा हुआ। अब पैदा हुआ तो थोड़ी याद रहेगा, पर माँ बाप तो बताते ना तुम कहाँ पैदा हुए थे, अभी उसको नहीं माँ याद है। तो याद नहीं है हमें ये कहनी और कहना और बात है, पर हमने देखा ही नहीं है परम धाम, ये कहना गलत हो जाएगा। देखा क्यों नहीं है, तभी तो दुखी मन कहता है भगवान उठा लो, देखा है ना, पर कैसे जाए ये पता नहीं है। अभी मन से हम जा सकते हैं, एक ही घर है परमात्मा के पास, वही घर उनका भी और हमारा भी। और तीसरी बात, गुणों की भी समानता है, जो ईश्वर के गुण वो मेरे भी गुण है, लेकिन अंतर है संख्या में, गुणवत्ता में नहीं। इसलिए कई समझते आत्मा परमात्मा का अंश है, अंश का मतलब कि संख्या में अंतर है, गुणवत्ता वही है, पर इसका मतलब ये भी नहीं कि अंश बनकर के हम निकले हैं परमात्मा से, नहीं, आत्मा भी अनादि अविनाशी, परमात्मा भी अनादि अविनाशी, पर गुणों में समानता है, गुणवत्ता में कोई अंतर नहीं है। ये नहीं परमात्मा शांति का सागर है तो मैं अशांत स्वरूप हूं, नहीं, मैं शांत स्वरूप हूं। लेकिन मैं आत्मा अपने आप को भूल जाती हूं तो अशांति का अनुभव होता है, फिर शांति मांगती हूं क्योंकि वो दाता है। इसलिए जैसे ही ये तीन बातों की समानता हमने समझी तो फिर परमात्मा से योग लगना शुरू हो जाएगा। अब इसमें अलग अलग स्टेजेस है, वो फिर आपको कल बताया जाएगा कैसे हम इन स्टेजेस से गुजरते हैं। इसमें चिंतन करते हैं, परमात्मा से बातें करते हैं, अपनी स्थिति को उन जैसा बनाते हैं और फिर उसमें खो जाते हैं। अब ये कल आपका विषय होगा, लेकिन अभी इतना ही कि मैं कौन हूं, मेरा कौन है और मैं कैसे उनके गुणों का चिंतन करते करते उसमें खो जाऊं। तो चलिए अब इसी स्मृति का हम अनुभव करेंगे और मन को परमात्मा में लगाएंगे। ये लाल प्रकाश जो जलेगा वो हमें संकेत देता है कि अपने मन बुद्धि को इस आवाज की दुनिया से दूर ले जाओ, पांच तत्वों से परे अपनी आत्मा का जो सच्चा धाम है, परमात्मा का जो सच्चा धाम है, उस धाम में बुद्धि द्वारा मन को ले जाओ और महसूस करो कि मैं एक ज्योति बिंदु आत्मा, परमात्मा की संतान, परम धाम का वासी और जो परमात्मा के गुण हैं वो मेरे भी गुण हैं। तो ये चिंतन करते करते एक एक गुण में खो जाओ। तो चलिए सीधा बैठेंगे और सीधा बैठेंगे क्योंकि अगर आप झुक करके बैठे या सिर झुकाकर बैठे और आंखें बंद करके बैठे सिर झुकाकर, तो धीरे धीरे राजयोग तो होगा नहीं लेकिन निद्रा योग जरूर हो जाएगा, निद्रा योग हो जाएगा, नींद इतनी अच्छी आएगी जो बात मत पूछो। परंतु हम यहाँ नींद करने नहीं बैठे हैं, हम यहाँ राजयोग करने बैठे हैं। तो मन तो बहुत शांत हो जाएगा, आपको लगेगा ये राजयोग हो रहा है, वो तो नींद में शांति का अनुभव हो रहा है। राजयोग में तो केवल शांति नहीं, खुशी, प्रेम, शक्ति, आनंद, ज्ञान का मनन, चिंतन, ये सब होता है, बिल्कुल जागृत अवस्था है। इसलिए भले आंखें खुली रहे, आंखें खुली रख के सामने देख सकते हैं, आपको सामने से वाइब्रेशंस मिल सकेंगे जिसके द्वारा आप बहुत कुछ अपने अंदर भर सकेंगे। जैसे ये आत्मा भी उस परमात्मा की याद में है, मैं आत्मा भी परमात्मा की याद में रहूं। तो चलिए अगर आंखें अपने आप बंद हो जाती कोई बात नहीं, ऐसे नहीं कि नहीं हो सकती है, हो जाए हर जा नहीं, लेकिन जानबूझकर के आंखें बंद करके बैठना ये भी हठयोग है, एक नेचुरल स्टेज। जैसे आप किसी को याद करते हो तो आंख बंद करके थोड़ी उसको याद करते हो, सब कुछ देख कर रहे हो तो भी उसी की याद में खोए हो। तो मन में उसकी याद हो, आंखें भले ये सामने देख रहे पर देखते हुए भी नहीं देखते, और जो आपको हम सजेशंस देंगे वो अपने मन में आप लाएं और धीरे धीरे वो स्वरूप बनते जाएं और अंदर में खुशी लाएं, बहुत खुशी और नशा, ये खुशी और नशा अगर अंदर है ना तो और बातें सब भूल जाती है। किस बात की खुशी? कि मैं आत्मा परमात्मा से मिलन मनाने जा रही हूं, कितनी बड़ी खुशी की बात है, जिसको मैंने कितने युगों तक ढूंढा, पुकारा, अब मुझे उसकी पहचान मिल गई है। मुझे आत्मा ने उनसे संबंध जोड़ लिया है। और फिर नशा, किस बात का नशा, कि वो तो मेरा सच्चा माता पिता है, मैं अधिकारी हूं। बच्चे को नशा होता अधिकार का, जो परमात्मा के गुण हैं वो मेरे भी गुण हैं, और इस अधिकार से परमात्मा को याद करो। अपने अंदर जाएं, अपने आप से पूछें, मैं कौन हूं। स्वयं को पहले पहचाने, और स्वयं को ही उत्तर दे, मैं एक आत्मा हूं। बुद्धि द्वारा मन को चिंतन दे, मैं आत्मा एक दिव्य प्रकाश हूं, अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु स्वरूप हूं। भ्रकुटि के मध्य विराजमान एक चमकता हुआ सितारा हूं। ये शरीर मेरा एक वस्त्र है, मुझ आत्मा ने अनेक देह रूपी वस्त्र धारण किए हैं। अब इस वस्त्र को भी भुलाकर अपने आत्मिक स्वरूप में मुझे स्थित होना है। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। शांत स्वरूप, शांति मुझ आत्मा का स्वधर्म है। शांति मुझ आत्मा का मूल स्वभाव है। शांति देश, परम धाम, मुझ आत्मा का स्वधाम है। अब मन और बुद्धि से आत्मा रूपी पंछी उड़ान भरकर पांच तत्वों से पार, सूर्य चांद सितारों से भी पार, आवाज की दुनिया से बहुत दूर, अखंड ज्योति के महतत्व में पहुंच जाए। एक सुनहरा लाल प्रकाश, ये मुझ आत्मा का निज धाम है। यहां मैं आत्मा अपने मूल स्वभाव में स्थित हूं, अति शांत। और मन की आंख से परमात्मा को देखो, मुझ आत्मा का परम पिता, जो रूप में ज्योति बिंदु है और गुणों में सिंधु के समान बेअंत है, अनंत है। शांति का सागर है, सदा शिव है, कल्याणकारी है, मैं आत्मा उनकी संतान शांत स्वरूप हो। शांत स्वरूप, शांत स्वरूप, मन शांत हो जाए, शांति की शक्ति से भर जाए। परमात्मा का सानिध्य अनुभव हो, उस शांति के स्रोत से शांति की किरणें मुझ आत्मा को प्राप्त हो रही है। कितनी शांति का अनुभव हो रहा है, कितना हल्कापन। कितना न्यारापन। मैं आत्मा अपने प्यारे शिव पिता को पहचान चुकी हूं। उनके साथ ही मेरे सर्व संबंध है। प्यारे शिव बाबा, आप ही मेरे सर्वस्व हो। आप ही मेरे माता पिता, बंधु सखा और स्वामी हो। आपका सानिध्य पाकर मैं आत्मा धन्य हो गई हूं। जो पाना था वह मैं आत्मा पा रही हूं। मेरा मन स्थिर है, मेरे चारों ओर प्रकाश प्रकाश है, इसी शांति की शक्ति को अनुभव करते करते मन परमात्मा की लगन में मग्न हो जाए। और इस शक्ति को भरकर वापिस लौटे, फिर से अपने शरीर में इस साकारी लोक में अपने भ्रकुटि के बीच में विराजमान हो जाए, पर एक नई ऊर्जा के साथ शांति की शक्ति भरकर कर्म क्षेत्र पर फिर से कर्म करें और इसी शक्ति को मन वचन और कर्म में प्रकट करें। तो ये जीवन सार्थक हो जाएगा और जन्म जन्म सफल हो जाएंगे। ओम शांति शांति शांति।